तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांति। अच्छा, हमारे सन्मुख उपस्थित हैं रानी बहन, नाम पहचानते रानी बहन 1953 से, जबकि आपकी आयु मात्र 6 वर्ष थे, 6 वर्ष की आयु में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। और दूसरी बात, 12 वर्ष की आयु में, माने 1959 के करीब, आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की। बहुत छोटी सी उम्र में जीवन समर्पित करना, जबकि हम जानते हैं कि बचपन में अपनी जीवन का कुछ पता ही नहीं होता है, 10-12 वर्ष का बच्चा तो खेलने कूदने में चला जाता, और उस उम्र में भगवान को अपनी जीवन दे देना और परमात्मा के प्रति निश्चय बैठ जाना, पहचान लेना, उसके साथ संबंध जोड़ना, ये बड़ी बात है। हैदराबाद कराची में तो छोटी छोटी बहनों ने अपनी जीवन समर्पित की, वह एक अलग समय था, लेकिन जब भारत में स्थानांतरित हुए उसके बाद का समय तो कुछ और ही था। और 59 में आपने अपनी सेवाएं पंजाब में दी, इसके बाद आपने कई स्थानों पर अपनी सेवाओं को दिया। वर्तमान समय आप पटना मुजफ्फरपुर, अर्थात ये कहें कि बिहार जोन की आप संचालिका हैं। साथ साथ सोशल विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। मुझे याद आता है कि मुंबई में भी आपने सेवाएं की हैं
एक बरस
क्योंकि दादी जी के साथ, जब गामदेव में बड़ी दादी जी के साथ रहते थे, तो वहां से लेकर के कांदीवली, मलाड आदि स्थानों पर आप जाकर के क्लास कराते थे, तो कई स्थानों पर अपने सेवाएं की हैं, सेवाओं के बीज डाले हैं, कहीं कहीं तो उस समय बीज डाले लेकिन आज वो फल फलीभूत भी हैं। तो मैं रानी बहन से कहूंगी कि आज के विषय को स्पष्ट करें। विषय बताया था आपको, स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी कैसे बन सकते हैं, इस विषय पर स्पष्ट करेंगे रानी बहन। हाँ, आपकी लौकिक बहन, बड़ी बहन सुधा बहन जो जलगांव, भुसावल, बुरानपुर, वह भी जोनल इंचार्ज थी, और साथ साथ पुष्पाल बहन, वह भी जर्मनी में अपनी सेवाएं दी। टोटल परिवार कहें कि बाबा के प्रति समर्पित भाव को करके चला और अपनी सेवाएं कई स्थानों पर दिया।
ओम शांति। जब मेरी आयु 6 वर्ष की थी, पहले दिन जब सेवा केंद्र पर गए, हमको पूरा याद है, दिल्ली कमला नगर का एक सेंटर खुला ही था। माताजी के साथ उस सेवा केंद्र पर जब जाना हुआ, सफेद वस्त्रधारी, जब सब दादियों को देखा, बहुत दादियां थी वहां, जब सफेद वस्त्रधारी दादियों को देखा, कैसा लगा, जैसे मैग्नेट ने खींच लिया, आकर्षण। उन्होंने भी हमको छोटा नहीं देखा। माताजी तो कोर्स करने बैठी, लेकिन एक दादी थी वो हमको क्लासरूम में ले गई, सोचा बच्ची है थोड़ा बिजी कर दें। उन्होंने ग्रामोफोन पर एक गीत लगाया, कहा आपको एक गीत सुनाते हैं। जितनी देर माताजी ने कोर्स किया उतनी देर उन्होंने मुझे टाइम दिया। गीत कौन सा लगाया? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। एक बार ये गीत सुना, कहा दोबारा सुनो, फिर दोबारा बजाया। ये गजल है, ये कोई डांस का गीत नहीं है। दूसरी बार सुनाने के बाद फिर उन्होंने कहा, इस गीत पर मैं आपको डांस करना सिखाती हूं। फिर उन्होंने इस गीत पर मुझे डांस करना सिखाया। इसके बाद मुझे आत्मा का ज्ञान दिया। आप कौन हो, आत्मा का गुण क्या है, दो तीन पॉइंट मुझे याद करा दिया। एक घंटा पूरा मुझे टाइम दिया और कहा रोज आना, आपको डांस सिखाएंगे। समझ गए? और ये आत्मा का पाठ याद करके आना। वो पहला दिन ऐसा अनुभव हुआ, यही मेरा घर है, यही मेरी दादियां हैं, यही मेरा परिवार है। हाँ, मुझे याद है 53 में हम माउंट आबू आए, कोटा हाउस में। बाबा मम्मा से जब मिले तो बाबा का पहला महावाक्य यही था, ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर लौट कर आई है। ये बाबा के वरदानी बोलते, और ऐसा वरदान बाबा ने दिया था, बच्चों की तरह घूम कर नहीं जाते थे, पूरा टाइम योग करना, पूरा टाइम क्लास करना, पूरा टाइम मुरली सुनना, पहला लाइन में बैठना। यहां से पढ़ाई शुरू हुई। ये हमारा सौभाग्य रहा बाबा और मम्मा की और बड़ी बड़ी दादियों की बहुत बहुत मीठी पालना में रहे। उन्होंने अंदर क्या भरा? अंदर ज्ञान का खजाना और अनुभव का खजाना। जब चंद्रमणि दादी के पास रहना शुरू किया, ऐसे तो 12 बरस की बच्ची को कोई रखता नहीं, लेकिन माताजी सब बच्चों को लेकर अमृतसर में अलग एक मकान किराए पर लेकर रहने लगी। बाबा को ये बात पता चली। उस टाइम ये पांडव भवन किराए पर था और अमृतसर का मकान एक दादी जी थी उनके बेटा ने खरीद करके दिया। यज्ञ की पहली प्रॉपर्टी है अमृतसर का मकान, तब ये किराए पर था। जब वो मकान खरीद हुआ तो बाबा का डायरेक्शन आया हमारी माता जी के लिए, उसको बोलो वो फ्लैट जो किराए पर लिया उसको छोड़कर इस फ्लैट में आ जाए। समझ गए? उस मकान में एक रोड साइड एक फ्लैट था, दो कमरे, किचन, बाथरूम, सेट था एक। तो बाबा के डायरेक्शन पर हम सब उस फ्लैट में आ गए। हम तो पढ़ाई करते थे, 8वीं क्लास में मैं पढ़ती थी। तो हम जब वहां आए, पढ़ाई भी जारी रही, ये पढ़ाई भी जारी रही, और जो आके उसमें रहे तब से बाबा के पास है। ये ड्रामानुसार ऐसे आना हुआ। जब हम चंद्रमणि दादी के पास रहते थे, उनका बहुत बहुत अभ्यास कराती थी योग की गहराई। शाम को 4 बजे वो योग में बिठाती थी, 8 बजे तक रोज 4 घंटा योग में बिठाती थी। कहती थी पार चले जाओ, मैं आपका चेहरा देखकर बताऊंगी पार गए कि नहीं। जब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं हो जाए बाबा को याद नहीं करना, पहले शरीर से पार जाओ, पहले देह से पार चले जाओ, मनन चिंतन करके एकदम आत्मा का अनुभव करो, फिर बाबा को याद करो। ये रूटीन कभी चेंज नहीं होता था और हर रोज एक बात दीदी कहती थी, योग के बाद कहती थी क्या पाया सुना के जाओ, एक एक को कहती थी सुना के जाओ क्या पाया। तो हम कहते थे अभी तो बाबा को याद किया है, धीरे धीरे प्राप्ति होगी। बोलती थी नहीं, अभी याद किया अभी पाया। आप धूप में खड़े हैं, गर्मी बाद में लगेगी, बोलो अभी लगेगी। हवा में खड़े हैं, ठंडी हवा चल रही है, हवा लग रही है। ऐसे शांति के सागर में बैठे हैं और शांति बाद में मिलेगी। सर्वशक्तिवान की गोद में बैठे हैं और शक्ति बाद में मिलेगी। कहती थी दीदी खींचो खींचो, प्राप्ति करो, लो। मम्मा एक पाठ समझाती थी, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, पहले वो सिरिंज में दवाई भरता है। कैसे भरता है? सुई को दवाई की शीशी में डाल देता है, फिर खींचता है। समझ गए? बुद्धि का योग श्री बाबा से लगाया, अब क्या करें? शक्ति खींचो, लो। ये नहीं सोचो अपने आप मिल जाएगा, लो। अपने को भरपूर करो। प्रैक्टिस कराती थी। आज देह से पार जब तक स्वयं की स्थिति में स्थित नहीं हुए, तब तक बाबा की याद और याद से प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। मेरे पास एक बहन आई, 2 बरस से एक स्थान पर रोज मुरली सुनाती है, रोज योग कराती है, कोर्स कराती है। वो आई और उसने एक प्रश्न पूछा, कहा मैं रोज मुरली सुनाती हूँ, कोर्स कराती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी इस शरीर से न्यारी बिंदु रूप आत्मा हूँ कभी अनुभव ही नहीं हुआ। दूसरे को पढ़ा रहे हैं, स्वयं को स्वयं की स्थिति का अनुभूति नहीं हुई। मैंने कहा सब सेवाएं छोड़ो, पहले बैठ जाओ, पहले ही अनुभव करो मैं कौन हूं, पहले रियलाइज करो, इस देह भान से अलग हो जाओ, पार चले जाओ, एक बिंदु रूप की स्थिति का अनुभव करो, ये मैं नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसको यूज कर रही हूं। लेकिन मैं क्या हूं? अति सूक्ष्म शक्ति पावर, इस शरीर से डिटैच, उस बिंदु रूप को देखो। शरीर यहां बैठा है और मैं परम धाम में, परम धाम में बैठकर इस शरीर को देखो, ये यहाँ है मैं वहां हूं। आपने ऐसा अनुभव किया है? आप भट्टी में आए हो, गहरा अनुभव करो, और इस अनुभव का आधार है पहले मनन करो, चिंतन करो। मेरे को मनन चिंतन का बहुत शौक रहा है। मैंने एक बार जानकी दादी से पूछा कि दादी आप रोज 2 बजे रात को उठकर चिंतन करते हैं और घंटों चिंतन करते हैं, हमारा थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, हमें ऐसी विधि बताओ जो हम मनन चिंतन आपकी तरह लंबे समय तक कर सकें। तो दादी ने बहुत सरल विधि बताई, बहुत सरल। उन्होंने कहा आप 7 दिन का कोर्स कराती हैं? मैंने कराते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, अपने आप को 7 दिन का कोर्स कराया है? आपने खुद अपने को 7 दिन का कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं, नहीं कराया है। क्या कराओ? अपने को 7 दिन का कोर्स कराओ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब आप किसी को कोर्स कराते हैं, 1 घंटा क्लास कराते हैं, 1 घंटा कराते हैं ना, 1.25 घंटा भी लग जाता है, याद रखना जब आप अपने को कोर्स कराएंगे 10 मिनट में खत्म हो जाएगा सारा ज्ञान। अपने को जब सुनाने बैठेंगे आपका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप क्या करना, क्या करना, 1 घंटे तक अपने को सुनाना। कैसे सुनाएंगे? पूरा विस्तार से सुनाओ, जितने एग्जाम्पल अपने को सुनाते हैं, आत्मा और शरीर के अंतर में जितने एग्जाम्पल सुनाते हैं सारे एग्जाम्पल अपने को सुनाओ, पूरा डिटेल विस्तार से पढ़ाओ। जो खत्म हो जाए तो जैसे जिज्ञासु प्रश्न करता है ऐसे अपने से प्रश्न करना, प्रश्न पे प्रश्न करना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न करना, फिर जवाब देना। आप घंटा 1.25 घंटा खींच कर ले जाना, ये पाठ दादी ने हमको बता दिया। हमको लगा बहुत सहज है। ये भी बताया आज दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं है मैं अपने को 1 घंटा क्लास नहीं कराती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं है। 7 दिन में से कोई बिना कोई टॉपिक पर मैं अपने को रोज क्लास कराती हूँ, मैंने कभी बंद नहीं किया। ये सारी बातें मुझे ऐसा लगा जैसे किसी खजाने की चाबी मिल गई है, बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि मेरी चाह थी मैं एकदम ज्ञान गंगा की तरह बहती जाऊं, ज्ञान मेरे अंदर गंगा की तरह बहता जाए, धारा की तरह बहता जाए, उसका मैं आनंद लूं। जैसे व्यर्थ चिंतन चलता है तो क्या होता है, घंटा कहां बीत गया पता नहीं चलता। ऐसे ज्ञान की धारा बहे और घंटा 1.5 घंटा बीत गया पता ही ना चले, तब हम कहेंगे मैं हूं ज्ञान गंगा। अगर ऐसी धारा नहीं बहती है तो हम अपने आप को ज्ञान गंगा नहीं कह सकते। जब मैं अपने सेवा केंद्र पर पहुंची, मैंने पहले अपॉइंटमेंट किया, अपने से टाइम फिक्स किया, मैं शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोर्स कराती थी, एक एक ग्रुप 5 से 6, दूसरा ग्रुप 6 से 7, तीसरा 7 से 8, चौथा 8 से 9, 10-12 लोगों का एक एक ग्रुप। 5 बजे से लगातार 9 बजे तक मैं कोर्स कराती थी। अब मैंने 4 से 5 बजे अपना टाइम फिक्स कर लिया। मैं जहां कोर्स कराती थी उस जगह ऑफिशियली मैं जाके बैठी और मैंने पहले दिन का लेसन शुरू किया और सोच लिया 1 घंटे तक मैं अपने को आत्मा का पाठ डिटेल समझाऊंगी, डिटेल। अब मेरा पहले दिन का आप अनुभव सुनो। मैंने अपने आप को सुनाना शुरू किया, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, एक एक गुण आत्मा की, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, पूरा डिटेल, पूरा डिटेल, पूरा डिटेल, जितना ज्यादा मैं विस्तार कर सकती थी वो मैंने किया। फिर मैंने घड़ी देखी तो आधा घंटा बीता था, अभी आधा घंटा बाकी था। फिर मैंने अपने आप से प्रश्न किया, आधे घंटे से मैं अपने आप को सुना रही हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मैं आत्मा को देख भी रही हूँ, क्योंकि हमारे मन को आंख है। मैं मन की आंख से आत्मा ज्योति बिंदु को देख भी रही हूँ, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ। मेरी जो महसूसता है, फीलिंग, यही है, यही हूँ, यही फीलिंग हो रही, यही मैं हूँ। ज्ञान अलग है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन मुझे फील क्या हो रहा है? मैं आत्मा बिंदु हूँ ये फील नहीं हो रहा है, शरीर फील हो रहा है। ये मैंने अपने आप से प्रश्न किया। इस पर जब अपने आप को समझाना शुरू किया, आत्मा शरीर से निकल गई है, दृश्य दिखाया, अब ये शरीर डेड है, ये आत्मा अलग है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। अब अपने आप को जो समझाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, वो पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा मैं पार चली गई, मैं आवाज से भी पार चली गई, मैं इस दुनिया से भी पार चली गई हूँ, शरीर यहाँ है और मैं परम धाम में हूँ। फीलिंग, मेरी अनुभूति, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये मैंने महसूस किया, पार चली गई। अब मुझे ऐसा अनुभव होने लगा, मैं आवाज में नहीं आ सकती हूँ, मैं अब बोल नहीं सकती हूँ। अब जो मुझे प्राप्ति हो रही थी, जो परम धाम में बैठकर जो मुझे शक्तियां मिल रही थी, अब जो मैं बाबा को याद कर रही थी, उसने मुझे पार ले गया। एक घंटा मैंने अपने को क्लास कराया और उसके बाद जो मैं ग्रुप को कोर्स कराती थी उसको मैंने कोर्स नहीं कराया। मैं दूसरी बहन को कहा इनको आप क्लास करो, और मैं 1-1.5 घंटा उसी स्थिति में बैठी रही, मगन होकर, उस शांति का, उस शक्ति का, बाबा को सन्मुख देखने का, परम धाम में बैठने का, वो मैंने जो सुख पाया 1 घंटा चिंतन के बाद। फिर मैंने अपने आप से पूछा, रोज योग में बैठते हैं 1 घंटा, रोज योग में बैठते हैं 2 घंटा बैठते हैं, ये अवस्था तो नहीं बनती है जो आज बनी है, तो रोज क्या करते थे? बैठते थे, उठ जाते थे। ये प्राप्ति जो आज हो रही है वो रोज क्यों नहीं होती थी? तब समझ में आया, योग में बैठने की पहली विधि है मनन। मनन करते करते, ये देह है ना, शरीर, इसका भान जन्म जन्मांतर का है, इससे रोज अपने को बाहर ले जाना है। बाबा कहते हैं पहली स्टेज है देही अभिमानी अवस्था। हमने स्वयं को समझा ही नहीं तो स्वयं पर राज्य क्या करेंगे? पहली स्टेज क्या है? स्व, स्व स्थिति, स्वधर्म, स्वचिंतन, फिर है स्वपरिवर्तन, फिर है स्वयं पर शासन, ये स्वयं पर राज्य। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज क्या है? स्वयं, पहले मैं स्व स्थिति में स्थित हो जाऊं। कई इसको बहुत सहज समझते हैं, बहुत सहज, लेकिन ये सहज नहीं है, इसमें पूरी मेहनत है, पूरी मेहनत है। एक दिन की मेहनत नहीं, ये हर रोज की मेहनत है। मैं अपने आप को शरीर से पार ले जाऊं, सोल कॉन्शियस हो जाऊं, मैं परम धाम में बिंदु बनकर बैठ जाऊं। हर बात पर फुल स्टॉप लग जाए। बिंदु बनना माना, बिंदु बनना माना पार्ट से मुक्त हो जाना। आत्मा शरीर में है तो पार्ट बजा रही है ना, देह है तो देह के संबंधी है, संपत्ति है, पदार्थ है, हमारी समस्याएं हैं, हमारे सामने आने वाली बाधाएं हैं, विघ्न है, जो कुछ भी है उसका संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ। जब मैं शरीर से अलग बिंदु रूप अवस्था में हूं, सारे पार्ट से मुक्त हूं, यही स्टेज है जो मुझे निर्संकल बना देगी, मुझे स्वधर्म में टिकाएगी, मेरे को स्व स्थिति बनाएगी। आप रोज आना, आधा घंटा एक घंटा अपने आप से बातें करें, मैं कौन हूं। इस सारे शरीर में मैं कहां है? है कहीं मैं? आंख मेरी, कान मेरा, हाथ मेरा, सिर मेरा, पैर मेरा, कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें ये मैं हूं, ये मेरा है। मैं कहां हूं? मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आंख मैं नहीं हूं, देख मैं रहा हूं, कान मैं नहीं हूं, सुन मैं रहा हूं, मुख मैं नहीं हूं, बोल मैं रहा हूं। ये अपने आप को सुनाओ, एकांत में बैठकर अपने आप को सुनाओ, ये मेरा है, मैं इसके अंदर हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर हूं, ये मेरा है। पहला पाठ है सोल कॉन्शियस हो जाएं, और हर रोज हों, सोने से पहले दिन में, बाबा कहते घंटे घंटे गीत क्यों बजता है, सोल कॉन्शियस हो जाएं, आत्म अभिमानी हो जाएं। आज बाबा कहते बच्चे चलते फिरते बाबा को याद कर सकते हो, लेकिन बैठते क्यों हो? आत्म अभिमानी बनने के लिए। लेकिन बैठकर भी आत्म अभिमानी नहीं बनते, पहले आत्म अभिमानी बनो फिर बाबा को याद करो। आत्मा से कनेक्शन है, आत्मा से रिलेशन है, तब वो पावर मिलेगी, तब हमारा स्वयं पर राज्य होगा। जब आत्म अनुभूति करते हैं तब हमें यह अनुभव होता है, कैसी आत्मा हूं मैं, मेरा स्वधर्म है शांति, है ना, मेरा गुण है शांति, शांति मेरा गुण है, शांति मेरा धर्म है, शांति मेरी शक्ति है। ठीक है, औरों को शांति देना मेरा कर्तव्य है। अब इस पर मुझे बड़ा निश्चय चाहिए। होता क्या है, आत्मा का ज्ञान भी है, ठीक है, बाबा की याद भी है, फिर भी हम शांत नहीं रहते, बात बात पे क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध की भावना, क्रोध की भावना, बदले की भावना, ये सब जागृत हो जाती है। कहाँ से जागृत होती है? ये स्वयं पर राज्य ना होना। जब हमारे कोई निश्चय है कि मेरा धर्म है शांति, मेरा स्वभाव है प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जितना हम अपने आप को आत्म अभिमानी बनेंगे, इतना हमारे हर कर्म में शांति, प्रेम और शक्ति प्रकट होगी। कैसी भी परिस्थिति आएगी, हमारी शांति नहीं जाएगी। ये स्वयं पर राज्य। मैं जो हूं, अपनी शक्तियां हमने इमर्ज की हैं, इमर्ज की हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, ये हमने बीज बोया है। कहां बीज बोया है? मन की धरनी में। मन एक धरती है, हमने उसमें बीज बो दिया। बीज बोने के बाद किसान रोज जल डालता है। इस पर निश्चय, विश्वास। हम कहते तो हैं कि मैं शांत स्वरूप हूं, फिर भी हम ये जो विकारी संस्कार है, वो आवेश आता है, बदले की भावना आती है। हम महिमा करने के बजाय एक दूसरे की कमियों का वर्णन करते हैं, कमियों का चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं? पुराना संस्कार है, जन्म जन्मांतर का, दूसरे को देखने की आदत। हमारी आंखें अपना चेहरा नहीं देखती है ना, हमारे शरीर की बनावट क्या है, हमारी आंखें अपना चेहरा नहीं देखती, दूसरों को देखती है। तो जिसको देखती है उनके बारे में चिंतन करती है, वर्णन करती है। बाबा ने क्या कहा? अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखता सर्वश्रेष्ठ गुण है। मुख का अर्थ ही है ध्यान। हमारा ध्यान अंतर आत्मा की ओर हो, हम अंतर्मुखी हो जाएं। जब आत्मा की ओर हमारा ध्यान होगा तो हमारे ये गुण है। शांत हमें होना है, शांत होना है, शांति पानी है, शांति लेनी है। बोलो। नहीं, शांत स्वरूप मैं हूं, है ना? शांति मेरे गले का हार है। हमारी दीदी हमको कहती थी, याद करो, शांति के सागर ने, बाबा ने अपने गले लगाकर मेरे गले में शांति का हार पहनाया है। इस संसार में किसी की भी ताकत नहीं ये हार उतार सके। समझ गए? दुनिया, ये चैलेंज है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो शांति का हार मेरे गले में पड़ा है इसको उतार सके। अपनी शक्तियों पर विश्वास। योग की विधि क्या है? शांति पाना है? नहीं, योग की विधि क्या है? मैं शांत स्वरूप हूं, यही है ना, या शांति पानी है। योग में बैठते हैं क्या करने? शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए? नहीं, हम ये पक्का किया है, पक्का करते हैं, मैं आत्मा हूं, मेरा गुण क्या है? शांति मेरा धर्म है, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये मेरा ओरिजिनल रूप है। जितना मैं याद करूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, क्या होगा? यही गुण प्रकट होंगे। अंधकार और प्रकाश, अंधकार को मिटाना और प्रकाश जागृत करना, दीप जगाना, दो काम है या एक काम है? एक। दीप जगाएंगे अंधेरा चला जाएगा, ठीक है ना? हम शांति का दीप जगाएंगे, ऐसा तो नहीं पहले क्रोध मिटाएंगे, पहले ईर्ष्या द्वेष मिटाएंगे, पहले वैर विरोध मिटाएंगे, तब शांति का गुण आएगा, ऐसा होगा क्या? पहले अंधकार मिटाएंगे फिर प्रकाश लाएंगे, ऐसा होगा क्या? हम एक बात याद करेंगे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। कितना याद करें, कितना याद करें? सारा दिन, सारा दिन, सारा दिन, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार अपने को याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये दीप जगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये दीप जगा रहे हैं। क्या होगा? क्रोध भगाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, क्या होगा? हाँ, क्रोध आएगा नहीं, आवेश आएगा नहीं, क्यों? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। कोई भी बात सामने आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, ये शांति और प्रेम से समाधान हो जाएगा। हम अपनी बात शांति और प्रेम से कहेंगे, शांति और प्रेम हमें सिद्धि दिलाएगा, शांति और प्रेम से वातावरण शांतमय प्रेममय हो जाएगा। हम प्रेम स्वरूप हैं, किसी की निंदा करने का इच्छा नहीं होगी। हम प्रेम स्वरूप हैं, ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं आएगी। प्रेम के सागर की संतान हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इसको महसूस करना है, इसको अनुभव करना है, फिर क्या होगा? संस्कार परिवर्तन स्वतः होगा। जैसे किसान बीज बोता है, फिर क्या होता है? जल भी डालता है, फिर भी बीज को अंदर अंदर कीड़े लग जाते हैं, लग जाते हैं ना? फिर दवाई डालता है कीड़ों को मारने के लिए। हमने ये बीज बो दिया, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, फिर क्या होता है? इसमें अपने ही मन में शंका पैदा हो जाती है, कोई मेरा अपमान करेगा तो कुछ कहेंगे नहीं, क्यों सहेंगे? किसको कह रहे हैं? हम अपने को कह रहे हैं। हम शांत रह के सुन लेंगे, जवाब नहीं देंगे। अब ये हमारे जो शांति का गुण है उसको कीड़े लग गए, ये जो हमारे संकल्प है ना, ये उसको कीड़े लग गए। अब इन कीड़ों को मिटाना, कैसे मिटाएंगे? मेरी शांति की शक्ति हर आत्मा को शांति की अनुभूति कराएगी। मेरे शांति के बोल, वरदानी बोल से हर आत्मा को सुख मिलेगा। मुझे आवेश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा ने इतने बच्चों की पालना की शांति और प्रेम से, कभी किसी को आंख नहीं दिखाई, कभी किसी को डांट नहीं लगाई, की ना, कितने बच्चे बन करके तैयार हो गए। हमारी बड़ी दादी कहा करती थी, मैं मुख्य प्रशासिका हूँ लेकिन मुझे प्रशासन करना नहीं पड़ता है, मेरा काम शांति और प्रेम से चल जाता है, मुझे लॉ हाथ में उठाना ही नहीं पड़ता है, मेरा हर काम लव से हो जाता है। ये ज्ञान के बोल हैं या अनुभव के बोल हैं? उन्होंने इतने बच्चों को संभाला कैसे? शांति से और प्रेम से, लॉ से नहीं, प्रेम से लॉ सिखाया, प्रेम से नियम सिखाया, प्रेम से कायदा सिखाया। हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, वो है संकल्प शक्ति। साधारण शक्ति नहीं है, क्रोध अंधकार है, शांति और प्रेम प्रकाश है। बीमारी भी अंधकार है, मन के कारण बीमारियां आती हैं। स्वस्थ जीवन प्रकाश है। हम बीमारी मिटाएं या स्वस्थ रहने का अभ्यास करें? अगर आप ये अभ्यास करके देखो, बाबा आपने मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य दिया है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, शरीर के सब अंग ठीक काम कर रहे हैं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, आपने मुझे वरदान दिया है, प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी। हाँ, जानकी दादी ने मुझे सुनाया, बाबा ने मुझे वरदान दिया, उनका जन्मदिन था 1 जनवरी, और दादी को पता नहीं था कि 1 जनवरी मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की बात है, इसी वर्ष की, दादी मंच पर आई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा तैयारी से जन्मदिन मनाया जा रहा है। कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरा जन्मदिन इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है। फिर दादी ने बताया कि वास्तव में मेरा आज जन्मदिन नहीं है, लेकिन 31 तारीख दिसंबर ऐसी स्थिति थी जैसे आज बचेगी ही नहीं, ऐसी स्थिति थी जैसे आज आखिरी दिन है। और दादी को बाबा का मैसेज मिला, गुलजार दादी के द्वारा संदेश मिला, बाबा ने कहा, बच्ची प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी। समझ गए? दादी ने इसको रिवाइज किया, रिवाइज किया, रिवाइज किया, प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी। किसने कहा है? बाबा ने कहा है, प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी, प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी। दादी ने इसको रिवाइज करते करते एकदम अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई, उठकर खड़ी हो गई और एकदम नया जीवन मिल गया। ऐसा जीवन मिला, लगा जैसे आज नया जन्म हुआ है, कल खत्म हो चुकी थी, आज नया जीवन मिल गया है। इसीलिए बोला 1 जनवरी जन्मदिन मनाया जाता है। किसने काम किया? संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति। दादी ने मुझे कहा, मैं ये वरदान आपको देती हूँ, मैंने इसको रिवाइज करना शुरू किया। बाबा आपने मुझे वरदान दिया है, प्रकृति अंत तक साथ देती रहेगी, आपने मुझे वरदान दिया है, तुम्हारा संपूर्ण स्वास्थ्य आपने मुझे वरदान में दिया है। बार 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 इसका चिंतन करने से क्या हुआ? शरीर में जितनी तकलीफें थी सब ठीक हो गई। ये मेरा अनुभव है, मैं अनुभव की बात सुना रही हूँ, समझ गए? मेरी पीठ में बहुत दर्द होती थी, अपने आप ठीक हो गई, और भी कई तकलीफें थी, कुछ कोई स्किन डिजीज थी वो भी ठीक हो गई, और भी कोई कुछ ठीक हो गया अपने आप। मैंने नहीं कहा ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, मन में क्या चिंतन चला, आपने बिल्कुल ठीक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कर दिया है। आप लोग भी करना। मन में इच्छा थी एक रस स्थिति रहे, कभी उतार कभी चढ़ाव, परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी लेकिन मेरी स्थिति न बदले, मैं सदा एक रस रहूं, पीसफुल रहूं, लवफुल रहूं, एक रस रहूं, बस निश्चय कर लिया मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। इसको बार बार रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया, क्या हुआ, कैसी भी परिस्थिति आई मन ऐसा शांत रहा जैसे मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, वो बाबा ने शांत रखा। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बाबा ने कहा हमेशा गुण गाओ। मुझे दादी ने एक बहुत अच्छी अनुभव की बात सुनाई थी, कहा कि अमृत वेले जब मैं योग में बैठती हूं बाबा के सारे गुण याद करती हूँ, सारे गुण जितने गुण याद कर सकती हूँ। अब मैं अमृत वेले जब योग में बैठती हूँ मैं परम धाम में जाके बिंदु रूप में बैठ जाती हूँ, एकदम लाइट, सारे पार्ट से मुक्त। फिर मैं वतन में बाबा के पास बैठती हूँ और फिर बाबा के सारे गुण याद करती हूँ। आज की मुरली में है ना, समीप रत्नों की निशानी, समीपता से समानता आएगी। समीपता किस बात में समीपता, विचारों में समीपता, संस्कारों में समीपता, व्यवहार में समीपता। दूर बैठे भी हम नजदीक हैं विचारों के कारण। हम किसके समीप हैं, किसके समीप हैं, बाबा के समीप हैं। बाबा लवफुल है, बाबा रहम दिल है, बाबा कल्याणकारी है, बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा सदगति दाता है, बाबा भाग्य विधाता है। मैं दाता विधाता भाग्य विधाता, अपने लिए भी सारी बातें याद करो, अपने लिए भी करो। ये एक ऐसा नशा है, इसको बार बार चढ़ाने से इसका नशा चढ़ जाए। ये जो इतने भी हमारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नहीं रहे, ये हमारा निश्चय हो जाए। हमें अपने विश्वास पर भी विश्वास करना है, समझ गए, निश्चय पर भी निश्चय करो। मैं यही हूं, यही हूं, यही हूं, मैं दाता हूं। हम शिकायत करते हैं किसी की, क्यों करते हैं, हम कुछ लेना चाहते हैं उनसे नहीं मिलता है, शिकायत करते हैं, ठीक है, मान चाहते हैं अपमान मिलता है, हम शिकायत करते हैं, सहयोग चाहते हैं नहीं मिलता है, हम शिकायत करते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम दाता बन जाओ, मुझे मान देना है लेना नहीं, मुझे सहयोग देना है, मुझे देना ही देना है, देना ही देना है, लेना नहीं है, लेना और देना ये सौदागर नहीं करना, सौदागर नहीं बनना है, सौदा नहीं करना है, क्या करना है, देना ही देना है, देना ही देना है। जो दाता होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। हमारी शिकायत बताती है हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हम शिकायत करते हैं। बाबा ने हमें सारी शिकायतों से परे कर ले गए, किसी की कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से राइट काम कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से राइट चल रहा है, हम उसको रॉन्ग क्यों कहें? जब हम किसी को रॉन्ग कहते हैं, ये गलत कर रहा है, तब वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। वो अपने विचारों से राइट है। अब आप दो व्यक्ति की बात सुनकर के देख लो, होता है दो पार्टी बन जाए, दो पार्टी अगर बन जाए, एक की बातें सुनो लगता है ये भी ठीक बोल रहे हैं, दूसरे की बात सुनो लगता है ये भी ठीक बोल रहे हैं, होता है। उसके सोचने का तरीका ये है, इसके सोचने का तरीका ये है, बस सोच के तरीके में अंतर है। वो भी इसको राइट समझ के कर रहा है, वो भी इसको राइट समझ के कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हर एक को समझना है, हर एक को समझना है। बाबा ने हमको स्वराज्य अधिकारी बनाया। स्वराज्य अधिकारी का मतलब ये है, हमको संघर्ष नहीं करना पड़े, हमको युद्ध नहीं करनी पड़े, कंप्लेन नहीं करनी पड़े। हमारा राज्य सुखमय राज्य हो। हमने एक संकल्प कर लिया है, हम दुख शब्द कभी बोलते ही नहीं है, हम इसको यूज नहीं करते। कौन सा शब्द? हमें इस बात से दुख हुआ, हम कभी नहीं बोल सकते, बोलेंगे ही नहीं, त्याग दिया इस शब्द को, हमको दुख से काम ही नहीं है। इसने ऐसा कहा मुझे बहुत दुख हुआ, इसने ऐसा किया मुझे बहुत दुख हुआ, हम ऐसा बोलते ही नहीं। हमें दुख होता ही नहीं, हम दुखी होते ही नहीं, तो बोलेंगे कैसे दुख हुआ? क्यों नहीं दुखी होते, क्यों नहीं दुखी होते? सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की शक्ति, है पवित्रता की शक्ति। अब मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्र आत्मा को कौन दुखी कर सकता है? देखो नशा, हमारे पास पवित्रता की शक्ति है, कौन हमें दुख दे सकता है? दे सकता है? पवित्र आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती, पवित्र आत्मा कभी अशांत नहीं हो सकती। अगर पवित्र आत्मा दुखी होती है, अगर पवित्र आत्मा अशांत होती है, ये उसकी पवित्रता की कमी है, ये हमारी पवित्रता की शक्ति की कमी है। हम दुखी क्यों होंगे, हम अशांत क्यों होंगे, हम डिस्टर्ब क्यों होंगे, हम परेशान क्यों होंगे? हमको बाबा ने साक्षी होकर दृश्य देखना सिखाया है, इस आत्मा का ड्रामा में ये पार्ट है, ये बजा रही है, वही हो रहा है। क्या हो रहा है? जो कल्प पहले हुआ था, मैं तो खाली दर्शक हूं। ऐसा ड्रामा का मीठा ज्ञान बाबा ने दे दिया है, हमें अशांत नहीं होने देगा, हमें दुखी नहीं होने देगा, कभी मुख से नहीं निकलेगा बहुत टेंशन है। बाबा के बच्चे भी बोलते रहते हैं बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन हो गया है, बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर हम ये बोलते रहेंगे टेंशन, डिप्रेशन, परेशान, डिस्टर्ब, ये समझो हम बीज बो रहे हैं, वृक्ष कैसा होगा? हमने ये बीज बो दिए, अब इनका जो वृक्ष निकलेगा वो कैसा होगा? टेंशन वाला होगा ना, डिप्रेशन वाला होगा ना। हम हो रहे हैं, कभी बोल नहीं सकते, ऐसा नशा चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसा ही पार्ट बजा रहा है, उसका ड्रामा में पार्ट है, वो बजा रहा है। मुझे क्या करना है? मुझे बाबा ने जो गुण दिए हैं, शांति, प्रेम, ज्ञान, ज्ञान का मनन चिंतन करें, ये स्वयं पर राज्य, ये स्वयं पर कंट्रोल, बाबा ने माया जीते जगत जीत बना दिया है ना। पांच विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों की जननी कौन है? इच्छाएं, कामनाएं, है ना। मुझे मान मिले, सम्मान मिले, मेरी बात पूरी हो, ये भी तो इच्छा है ना। इच्छा नहीं है, है या नहीं है ना। मेरे अंदर एक ही भावना जग जाए, उसका नाम क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। मैं सबको कहती हूँ, मन की इच्छाएं, कामनाएं कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मुझे देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ये इच्छा नहीं है? लेकिन इसको इच्छा शब्द कहना अच्छा नहीं लगता, इच्छा शब्द ही अच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा जब पूरी नहीं होती तो तृष्णा का रूप ले लेती है, और तृष्णा तृप्त होने नहीं देती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो क्या होता है? लोभ उत्पन्न होता है। इच्छाएं दो विकार पैदा करती है, क्रोध भी और लोभ भी। लोभ वह जब संग्रह करते हैं तो उसमें हमारा मोह हो जाता है, मेरा है, और अहंकार आता है। पांचों ही विकारों का मूल क्या है? इच्छाएं। बाबा ने हमें कहा है, बार बार याद करो, क्या याद करो, क्या याद करो, मैं देवता हूं, देवता कुल का हूं, है ना, मैं देवता कुल का हूं। पांच स्वरूप का है ना बाबा ने, याद करो अपने, आदि स्वरूप, आदि स्वरूप क्या है हमारा? मैं सतयुग में देवता हूं, और कैसा हूं? सर्वगुण संपन्न था ना, मैं सर्वगुण संपन्न था ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे बनना है या यही मेरा स्वरूप है? क्या करना है? बनना है नहीं, यही मेरे संस्कार हैं, क्योंकि मेरे अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है, सत्यों का रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, 84 जन्मों का रिकॉर्ड, तो सत्यों का संस्कार मेरे अंदर भरा हुआ है, रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, भरा हुआ, बोलो माताएं पीछे, है ना, सत्यों का संस्कार मेरे अंदर भरा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? इमर्ज करना, इमर्ज करना। कैसे इमर्ज होगा? हम याद करेंगे, मैं देवता कुल का हूँ, देवता कुल में भी मैं सूर्यवंशी कुल का हूँ। बाबा ने कहा बार बार याद करो, मैं कैसी कैसी आत्मा हूँ? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। यही पाठ है ना हमारा, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। हमारा ये पढ़ाई नहीं है मुझे शांति देना, बाबा मेरे को आनंद देना, बाबा मुझे सुख देना, मुझे शक्ति देना, ये तो हमारा योग नहीं है ना। हम बाबा को याद करने बैठते कुछ मांगते नहीं है बाबा से, बाबा ने कहा सत्यु का राज सिंहासन का ताज और लाइट का ताज दोनों अपने चेहरे पर लगा हुआ देखो, अपनी संपूर्णता का दर्शन करो, परम धाम में मैं अनादि स्वरूप याद करो, सत्यु का आदि स्वरूप याद करो, मेरा ही स्वरूप है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इसको बार बार याद करो, बार बार याद करो, बार बार याद करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, क्या होगा? ये है दीप जगाना, ये हम दीप जगा रहे हैं। ये दीप जगाएंगे तो अवगुणों का अंधेरा मिट जाएगा। टेंशन, डिप्रेशन, क्रोध, आवेश, ये अंधकार मिट जाएगा ये दीप जगाने से। सत्युग में सदा निरोगी काया, कंचन काया, कल्प तरु समान काया थी, आज भी है, आज भी है। ये तन बाबा ने दिया है, पूर्ण स्वस्थ बनाया है सेवा के लिए। स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। कैसे याद करें? बार बार याद करें, बार बार याद करें, बार बार याद करें। मैंने एक जगह किसी का अनुभव पढ़ा, एक लड़की थी, उसको दिखाई नहीं देता था, अंधी हो गई थी। पहले दिखता था, फिर अंधी हो गई थी। उसको किसी ने कहा, तुम याद करो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, और भगवान का शुक्रिया करो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो बार बार याद करने लगी, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बार 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 याद करने लगी। एक डेढ़ महीने के बाद उसको दिखने लग गया। जब डॉक्टर के पास गई दिखाने, डॉक्टर ने कहा तो चमत्कार हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि इसको दिख जाए बिना मेडिसिन के। फिर उसके मन में ये भाव आ गया, अब वो ये चिंतन करने लगी कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अब उसके अंदर का सारा सिस्टम चेंज कर गया। किस चीज का प्रभाव है? संकल्प की सृष्टि। बाबा की सारी पढ़ाई का सार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। अपने लिए शुभ भावना जगाएं, अपने लिए शुभ कामना करें, अपना संपूर्ण दर्शन करें, अपनी संपूर्णता का दर्शन करें, अपनी श्रेष्ठ पवित्रता का दर्शन करें, अपनी शांति की शक्ति का दर्शन करें, अपने आनंद स्वरूप का दर्शन करें। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये निश्चय का भी निश्चय करें। भट्टी में आया ना, करेंगे करेंगे। अगर शरीर में कोई बीमारी है, हरे को कुछ ना कुछ है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, बाबा ने मुझे यहाँ बुला के एकदम स्वस्थ कर दिया है, कर दिया है। आप सारा दिन याद करो, आप जब यहाँ से जाएंगे आप देखेंगे कि हम ये तकलीफ लेकर आए थे, यहाँ ठीक हो गए। मन पर भी कोई बोझ लेकर आए थे, बाबा मिटा दो, कहना नहीं पड़ा, मिट गया। कोई बातों की भारीपन था, भूलती नहीं थी, भूलती नहीं थी, भूलती नहीं थी, याद करना, भूलना चाहते थे, भूलती नहीं थी। अब ये याद करो, अपनी संपूर्णता का दर्शन करो, अपने संपूर्ण रूप को देखो, आनंद लो उसका। मैं किसकी संतान हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। आज बाबा ने कहा ना मुरली, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरा साथी कौन है? स्वयं बाबा मेरा साथी है। आज बाबा ने कहा बच्चे कोई समस्या आएगी याद करना, बाबा बाबा आ जाएगा। जी हजूर, जब बाबा जी हजूर करने को तैयार है तो फिर हम भी तो जी हजूर करेंगे ना। हम भी तो करेंगे ना जी हजूर। तो मीछे बाबा ने सारी पढ़ाई, अब सारी अपने ज्ञान की पढ़ाई, मुरली की पढ़ाई, अब अच्छी तरह से देखेंगे। शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ दर्शन। बाबा की संपूर्णता को देखो, सर्व गुणों को देखो, अपने सर्व गुणों को देखो, कमियों खामियों को नहीं देखो, अंधकार को नहीं देखो। आप दीप जगाओ, अंधेरा मिट जाएगा। गरीबी क्या है? गरीबी भी अंधकार है। अगर हमको धन दिखाई दे रहा है, सत्यु के सोने के महल दिखाई दे रहे हैं, भरपूर भंडार दिखाई दे रहा है, कभी धन की कमी नहीं आएगी। जो कहता है कि हम बहुत लाचार हैं, हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, वो कभी नहीं कर सकेगा। जो ये देखता है बाबा ने भंडारा भरपूर कर दिया है, संपन्नता, संपूर्णता, बेहद विशाल भंडार भर दिया है बाबा ने, भंडार भर दिया है, याद करके देखो धन भी बरसने लग जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, सभी से प्रेम का वातावरण बन जाएगा। सिर्फ अपने संकल्पों पर हमारे ऊपर सारी शक्ति है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे संकल्पों पर डिपेंड करता है हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहले स्वयं फिर राज्य, ना बोलो, पहले स्वयं फिर राज्य। बाबा ने तो राज्य दिया, बाबा ने भाग्य दिया, आज मुरली में कहा ना, तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, था ना आज की मुरली में, भाग्य विधाता तुमको मिला है, और क्या चाहिए। बाबा ने भंडार भरपूर कर दिया है, हमारे भाग्य के भंडार भरपूर कर दिए हैं, सिर्फ हम उसको बार बार देखें, हम बार बार उसको देखें, हमको देखने की आंख चाहिए। आदत है कमी देखने की, कमजोरी देखने की। आपको जीवन में बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, याद क्या आता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, जो चीज नहीं है ना वही याद आएगी, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वही याद आएगी। जो है उसका शुक्रिया ही नहीं करते, जो है उसको देखते ही नहीं। बाबा, बाबा मिला, इतना भाग्य मिला, इतना बड़ा परिवार मिला, इतनी शांति की शक्ति मिली, इतना सुखी रहने की ट्रेनिंग दे दी बाबा आपने, सुखी जीवन जीने की कला सिखा दी आपने, कदम कदम पर साथ दे रहे हो, कदम कदम पर गाइड कर रहे हो, क्या पाया है उसकी लिस्ट बनाओ ना। बाबा ने क्या कहा, जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने क्या कहा, क्या कहा, पा लिया, पा लिया। आज सारा दिन यही कर लेना, क्या याद करेंगे, पा लिया, पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, जो चीज मुझे चाहिए बाबा ने दे दिया है। बाबा ने क्या कहा था, बच्चे जिस कार्य को करने जा रहे हो वो कार्य हुआ पड़ा है, तुम तो खाली नाम करने जा रहे हो, हाथ लगाने जा रहे हो, हुआ पड़ा है। मेरा आनंदमय जीवन, मेरा प्रेममय जीवन बना पड़ा है, उस संपूर्णता को अपने अंदर अनुभव करें। उस संपूर्णता को अनुभव कब करेंगे, जब संपूर्णता को देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे तब अनुभव करेंगे। फिर हमारी संपूर्ण शक्तियां हमारी हर बात का समाधान कर देगी, हमारे संकल्पों पर सब कुछ डिपेंड करता है। बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, हमने सिद्धि पाई है, संकल्प की सिद्धि, क्या मिला है हमको, संकल्प से सिद्धि। हमारे विचार हमारा संसार है और हमारा संसार बाबा है, हम उस संसार में रहते हैं जिसका नाम है बाबा। सारे कार्य सिद्ध करने वाला, सारे भंडार भरने वाला, हर कदम में साथ देने वाला हमारे साथ है। इसको बार बार इमर्ज करना, बार बार याद करना मेहनत है। हाँ, ऐसा सहज नहीं समझना, जो सहज समझते हैं ना वो करते नहीं है, सारा दिन मेहनत है। अपने को आत्मा निश्चय करने की मेहनत करो, मेहनत करो, सारा दिन ज्योति बिंदु आत्मा को देखो, फिर आत्मा के गुणों को देखो, फिर बाबा के गुणों को देखो, फिर परम धाम को देखो, परम धाम के सारे नाम याद करो, मनन चिंतन करना है ना, परम धाम के सारे नाम याद करो, बाबा के सारे नाम याद करो, बाबा के सारे गुण याद करो, आत्मा के सारे गुण याद करो, स्वर्ग के सारे नाम याद करो। आप एक एक बात याद करना शुरू कर दो, कोई नई बात थोड़ी याद करनी है। आपका एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा बीत जाएगा, आप एक एक प्रश्न अपने आप को बताते जाओ और उसका आंसर अपने आप को देते जाओ, देखो आप दो घंटा फ्रेश हो जाएंगे। पांचों स्वरूप को सामने लाओ, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, एक एक स्वरूप को सामने लाओ, देखो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, कितनी ऊंची सीट पर बिठाया बाबा ने। जब बैठ जाएंगे तब वो हमारे एक्शन में आएगा, तब उसकी प्राप्ति हमको महसूस होगी, तब हमें लगेगा हमारा भंडारा भरपूर है, बाबा ने भंडारा भरपूर कर दिया है, शक्तियों से भर दिया है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। मैं समझती पा लिया, इस आधार से हम सब स्वराज्य अधिकारी बन गए ना, पा लिया माना हम अधिकारी बन गए। पाना है तो अधिकारी बनना है, है? कितना एक छोटा सा शब्द परंतु उसमें कितना सार भरा हुआ। और आज सब आप इसी बात की स्मृति करेंगे। दूसरा एक बहुत अच्छी बात बताई कि शांति का हार कहाँ है, हमारे गले में है, और वो हार हमारा कोई उतार नहीं सकता है ना। रास्ते में जाओ तो कोई चैन खींच लेता है ना। माताएं फिर मंगल सूत्र आदि पहन के जाते, कोई खींच के चला जाता है। ट्रेन में एक बातें हो सकती है, लेकिन शांति रूपी हार, और हमें कोई डर ही नहीं। भले चोर आवे, लुटेर आवे, डाकू आवे, पर हमें कोई डर है। कितना अच्छा शब्द था कि शांति का हार मेरे गले में से कोई उतार नहीं सकता। शायद आपने इस पर गहरी रीति से ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं तो स्टार्टिंग की पॉइंट पर ही ध्यान दिया कि कितनी अच्छी बात है कि वह उतार नहीं सकता है? हम खुद ही उतार के रख देते हैं, वो एक अलग बात है। देह भान में आते हैं तो शांति भूल जाती है, माना हम उतार के रख देते हैं, लेकिन बाकी किसी की ताकत नहीं है। तो रानी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद कि खास शांति वन से, वैसे मुजफ्फरपुर से बच्ची के रानी वहां पहुंचे, युगलों के बच्चे, और उसमें से भी समय निकाल करके हमारे पास पहुंचे हैं। इसे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। एक हाथ हिला करके हम सभी धन्यवाद करेंगे।
सागर में जल इतना।